पृष्ठ संख्या 140, अध्याय 4, अजराणा घराना। इस घराने को यदि दिल्ली घराने की एक निकटतम शाखा कहें तो अनुचित न होगा। दिल्ली के निकट मेरठ जनपद में एक गांव है जिसका नाम अजराणा है। वहां के मूल निवासी दो भाई कल्लू खां और मीरू खां ने दिल्ली आकर उस्ताद सिद्धार्थ खां दाढ़ी के पौत्र सिताब खां से तबले की विधिवत शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा पूर्ण हो जाने पर वे अपने गांव वापस चले गए। तत्पश्चात उन बंधुओं ने अपनी प्रतिभा और सूझबूझ से अपनी गुरु परंपरा प्राप्त वादन शैली में मौलिक परिवर्तन किए और नए ढंग की बंदिशों का निर्माण किया। सर्वश्री कल्लू खां और मीरू खां का समय अनुमानतः सन 1780 के पश्चात का रहा होगा। कालांतर में उनके वंश और शिष्य परंपरा ने उस शैली में निरंतर निखार पैदा की और उसको एक पृथक घराने की मान्यता दिलाने में सराहनीय कार्य किया। यूं तो अजराणा घराना पश्चिम के घरानों की श्रेणी में आता है जिसकी विशेषता बंद और किनार के बाज में है, किंतु उसमें मौलिक बंदिशों एवं भिन्न छंद के प्रयोग से तत्कालीन उस्तादों ने उसे पृथक घराने की मान्यता दे दी। अजराणा घराने की परंपरा। इस घराने के प्रवर्तक कल्लू खां और मीरू खां की वंश परंपरा में मुहम्मदी बख्श, चांद खां, काले खां, कुतुब खां, तुल्लन खां एवं घीसा खां हुए। खेद है कि इन कलाकारों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। उस समय का कोई इतिहास न प्राप्त होने के कारण केवल किंवदंतियों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। कुतुब खां के पुत्र हस्सू खां माने हुए उस्ताद थे। उनके पुत्र वंशज एवं शिष्यों में बंबू खां, शम्मू खां तथा नन्हे खां हुए। इस परंपरा में अजजुद्दीन खां, नियाजू खां तथा घीसा खां की परंपरा में जिम्मू खां तथा उनके शिष्य सफिया खां, निजामुद्दीन खां, जमीर अहमद अली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। लगभग सन 1940 ईस्वी से उस्ताद शम्मू खां के पुत्र उस्ताद हबीबुद्दीन खां संगीत जगत में चमके और उनका वादन काल लगभग 2.5 दशकों तक ही रह सका। हबीबुद्दीन खां ने उस्ताद मुनीर खां से भी शिक्षा प्राप्त की थी। खां साहब के हाथ में वह जादू था कि जहां वे बजाते थे बेजोड़ बजाते थे। वे सोलों की अपेक्षा संगत करने में अधिक पटु थे, परंतु सन 1965 ईस्वी के बाद उनका वादन शिथिल होने लगा और कुछ ही वर्षों में उन्हें लकवा का प्रकोप हो गया और सन 1972 में इस लोक से चले गए। उनकी परंपरा में उनके पुत्र मंजू खां तथा उल्लेखनीय शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री सुधीर कुमार सक्सेना बड़ौदा, हजारीलाल कथक मेरठ, करण सिंह आकाशवाणी इंदौर, राम धुर्वे महाराज बनर्जी कलकत्ता, पप्पन खां राम प्रवेश सिंह दरभंगा, अमीर मोहम्मद खां टोंक आदि। तदुपरांत इस घराने की परंपरा को जीवित रखने में आकाशवाणी दिल्ली में कार्य कर रहे श्री रमजान खां दिल्ली, आशिक हुसैन जयपुर, हसमत अली खां आकाशवाणी श्रीनगर, यशवंत केलकर मुंबई आदि का भी विशेष योगदान है। पृष्ठ संख्या 141। संभव है इस वर्णन में किसी कलाकार का नाम छूट गया हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु घराने की तालिका में सभी को स्थान देने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है। अजराणा घराने की वादन शैली। पहले हम देख चुके हैं कि अजराणा घराने के मूल प्रवर्तकों ने दिल्ली घराने के उस्तादों से शिक्षा प्राप्त की थी, अतः इस घराने की वादन शैली का आधार गुरु घराने दिल्ली की वादन शैली ही है। परंतु इस घराने की शैली में इतना अंतर आ गया है कि इसमें मौलिकता स्पष्ट दिखलाई देने लगी। अब हम इस घराने की वादन शैली की विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। पहला, अजराणा घराने के उस्तादों ने कायदे की रचनाएं त्रयस्र तिस्र जाति में अधिक की, जबकि उस समय तक दिल्ली वालों ने केवल चतुरस्र जाति में कायदे रचे थे। अजराणे वालों के इन नवीन प्रयोग एवं लय वैचित्रता के कारण उनको सरलता से स्वतंत्र घराने की मान्यता मिल गई। इस घराने में डग्गे बायां का प्रयोग मीण युक्त सुंदर एवं दाहिने के बोलों से लड़ता हुआ होता है, जो अन्य किसी घराने से अलग है। देखिए किस प्रकार निम्न कायदे की प्रथम दो मात्रा धाक्र में मीण का काम किया जाता है। इसमें धा के पश्चात 1/3 मात्रा का विराम बाएं से मीण के द्वारा भरा जाता है, जो कायदे के सौंदर्य को द्विगुणित कर देता है। पूरा कायदा इस प्रकार है, धाक धातित धागे तिरकित धाधा घेघे तक धीन धीनागेन ताक ताकित ताके तिरकित धाधा घेघे तक धीन धीनागेन। तीसरा, अभी तक तबला वादन में मध्यमा अंगुली एवं तर्जनी का ही प्रयोग होता था, परंतु इस घराने वालों ने तबला और बायां दोनों पर इन अंगुलियों के साथ साथ अनामिका का भी प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इस नवीन प्रयोग ने कुछ बोल जैसे धिनगिन अत्यंत सरलता से द्रुत लय में बजने लगा। इस बोल समूह में न तर्जनी से चाटी पर न बजाकर अनामिका के से स्याही के पूर्व भाग से निकाला जाने लगा। चौथा, यह घराना कायदों की खूबसूरती और विविधता के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ के कायदे धा और धिन के उपरांत कत ती धीगन घेनक आदि बोलों से भी प्रारंभ होते हैं, जो अन्य घरानों में कम दिखाई देते हैं। पांचवा, इस घराने के कुछ कायदों में एक और विशेषता देखने को मिलती है, जो कायदे के उत्तरार्ध अर्थात खाली मुंदी से संबंधित है। अधिकांश कायदे के उत्तरार्ध का भाग पूर्वार्ध का बंद बायां रहित ही होता है, जो निम्न कायदे से स्पष्ट हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 142। धा घे घेनक धीट धीट कीट धाधा घे घेनक तीन तीना के नता के केनक तीट तीट कीट ढाधा घे घेनक धीन धीना गीना। इसके विपरीत अजराणे के त्रयस्र जाति के निम्न प्रसिद्ध कायदे को देखिए, इसमें उत्तरार्ध का भाग अन्य कायदों से भिन्न है। धा 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 धिन धा धिन धाधा घेघे तक धिन धीनागिन धिन धा धिन धाग तिट किट धाधा घेघे तक धिन धीनागिन धा 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 धिन धा धिन धाधा घेघे तक धिन धीना धिन धा धिन धाग तिट किट धाधा घेघे तक धिन धीनागिन। उपर्युक्त कायदे में खाली के बोलों में ता 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 तिन ता तिन के स्थान पर तिन नाना न ताके तीर किट बोल लगाए गए हैं, जो कायदे के साधारण नियमों से हटकर हैं, और यही इस घराने की विशेषता है। अब इस घराने की वादन शैली की सोलो वादन एवं संगति में उपयुक्तता पर विचार करेंगे। सोलो या स्वतंत्र वादन के लिए यह बाज बहुत सफल है, क्योंकि इसमें जिस वादन का दर्शन होता है उसे गुणीजन शुद्ध तबला मानते हैं। यही कारण है कि आज बाज अत्यंत कठिन साध्य होने पर भी अधिकतर गुणीजनों के बीच सराहा जाता है। इसके लय वैचित्र्य से पूर्ण लचीले कायदे वादन में विशेष आकर्षण पैदा कर देते हैं। तबला विशेषतः संगत का वाद्य है, अतः वही बाज सफल माना जाएगा जो प्रत्येक गायन शैली वादन एवं नृत्य की संगति में खरा उतर सके। इस परीक्षण में अजराणा की वादन शैली पूर्णतः सफल नहीं होती। गायन वादन की कुछ विधाओं एवं कथक नृत्य की संगति में यह बाज पूर्णतः उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें खुले और जोरदार परन, टुकड़ों, चक्रदार आदि का अभाव है। इसीलिए आधुनिक युग के सफल वादकों ने अपने अजराणा वादन में पूरब की शैली का अनुकरण किया है। इस दिशा में मेरठ के उस्ताद सम्मू खां एवं उनके पुत्र स्वर्गीय उस्ताद हबीबुद्दीन खां के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस घराने के कुछ अन्य कायदे के उदाहरण पृष्ठ संख्या 143 पर उद्धृत हैं।